रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। प्रिय श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम पवित्र कुरान के सूरह बकरा की 207वीं से 209वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद से कर रहे हैं। तिलावत का श्रेय पाया है श्री सब्ज अली ने।
بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو ایشور کی مرضی کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور ایشور اپنے بندوں کے پرتی اتینت کرونا میں ہے۔ ہے ایمان والو، تم سب پورن روپ سے اسلام میں پروشت ہو جاؤ اور شیطان کے پچنوں کا انسرن نہ کرو کہ نسندے وہ تمہارا کھلا ہوا شترو ہے۔ پھر یدی تم اسپشٹ نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی لڑکھڑا گئے تو جان لو کہ نسندے ایشور اتینت پربھتوشالی اور تتو درشی ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شدوم میں ہوں احمد عباس، میرا سلام سویکار کیجیے۔ ہمارے یہ پرسارن آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ ہے parstoday.ir/hi۔ شدہ واٹس ایپ پر ہمارا نمبر ہے 00989035065492۔ اور شوتاؤ، آج شنیوار ہے، مرداد کی 28، سفر کی دوسری اور اگست کی 19 تاریخ۔ اس سمے کی سبھا میں پرستت کیے جانے والے کاریکرموں کی روپ ریکھا نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو سنائیں گے انتراشٹریہ سماچار، جس کے بعد آپ کی سیوا میں پرستت کیا جائے گا کاریکرم راجنیتک چرچا۔ شوتاؤ، کاریکرم راجنیتک چرچا میں ہم آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں بھارت سے ایک، اور اس کے علاوہ कुछ विषयों की समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक चर्चा के बाद आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे अच्छी आदतें, और इसके बाद हम आपको सुनाएंगे अगला साप्ताहिक कार्यक्रम ईरानी व्यंजन। ईरानी व्यंजन हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपको ईरानी पकवानों के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि इन पकवानों को तैयार करने की विधि क्या है। तो श्रोताओ, यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप सुनेंगे विश्व समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओ, मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास से सुनिए विश्व समाचार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। शिराज आतंकी हमले का आखिरी आतंकी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरान और सऊदी अरब के बीच महत्वपूर्ण समझौता होने जा रहा है। भारत में पढ़ा लिखा नेता चुनने की सलाह देने वाले टीचर को नौकरी से निकाल दिया गया। इसराइली मीडिया का कहना है कि सैनिक और राजनीतिक नेतृत्व आमने सामने हैं और बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी गणराज्य ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री हुज्जतुल इस्लाम इस्माइल खतीब ने बताया कि हाल ही में शिराज नगर के शाह चिराग मजार पर होने वाले आतंकी हमले में लिप्त आखिरी आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में इस बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया है। इंटेलिजेंस मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि पकड़ा गया आतंकी हमले में सपोर्ट का काम कर रहा था। इंटेलिजेंस मंत्री ने बताया कि हम बहुत जल्द उस देश में जाएंगे जहां इस आतंकी हमले की साजिश रची गई और जानकारियों का आदान प्रदान किया जाएगा। 13 अगस्त को हजरत शाह चिराग के मजार पर आतंकी हमला हुआ था जब दाइशी आतंकी मजार में घुस गए थे। हमले में 2 खादिम शहीद हो गए। दूसरी ओर राष्ट्रपति रईसी ने मजार के साहसी खादिम की सराहना की और उसे पुरस्कृत किया। आतंकी हमले के दौरान खादिम फरजाद बादपा सहित कुछ लोगों की सूझबूझ के नतीजे में हमलावर जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया, वरना अधिक जानी नुकसान हो सकता था। फरजाद बादपा को सिपाही पासदाराने इनकलाब फोर्स में शामिल कर लिया गया है।
ईरान की आर्म फोर्सेस के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल मोहम्मद बाकेरी ने कहा कि आज रूस नेटो के विस्तार के मुकाबले में डट कर खड़ा हो गया, और चीन भी अमेरिका का मुकाबला करने के लिए अपनी सामरिक शक्ति का विस्तार कर रहा है। जनरल बाकेरी ने पासदाराने इंकलाब फोर्स IRGC की सुप्रीम असेंबली की बैठक में बोलते हुए IRGC की अनगिनत उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि इस फोर्स की क्षमताओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो अभी 100 गुना अधिक प्रगति हासिल कर सकती है। जनरल बाकेरी ने कहा कि IRGC ने साम्राज्यवादी ताकतों की साजिशों को बार बार नाकाम किया है, इसलिए अमेरिका की तरफ से सिपाही पासदारान पर लगातार दबाव डाला जा रहा है। जनरल बाकेरी ने अमेरिका में यूनिपोलर व्यवस्था चाहता जहां उनका वर्चस्व हो, लेकिन अमेरिका की ताकत क्षीण हो रही है। आज रूस नाटो के विस्तारवाद का डटकर मुकाबला कर रहा है, जबकि चीन भी अमेरिका को ललकारने के लिए अपनी सामरिक क्षमताओं में विस्तार पर ध्यान दे रहा है। इससे पता चलता है कि अमेरिका का पतन जारी है। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स जैसे संगठन विश्व स्तर पर शक्तिशाली हो रहे हैं।
ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने, परस्पर सहयोग में विस्तार करने और चाबहार बंदरगाह की पूर्ण क्षमता को समझने के मार्गों पर चर्चा की। शुक्रवार को भारतीय प्रधानमंत्री के साथ फोन पर बातचीत में राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि ईरान और भारत को पारगमन और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से सहयोग बढ़ाना चाहिए। ईरानी राष्ट्रपति ने उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के संबंध में अधिक विचार विमर्श के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रपति रईसी का कहना था कि इस्लामी गणराज्य ईरान दुनिया भर के सभी देशों, खासकर एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंध विकसित करना चाहता है। रईसी का कहना था कि तेहरान और नई दिल्ली के बीच ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं जो विभिन्न स्तरों पर संबंधों के विस्तार के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं। इस बातचीत में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिराज स्थित शाह चराग रोजे में आतंकवादी हमले की निंदा की और ईरानी सरकार, राष्ट्र और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जताई। गौरतलब है कि 13 अगस्त को एक बंदूकधारी आतंकवादी ने पवित्र रोजे में घुसकर जायरीन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। मोदी ने ईरान के साथ दीर्घकालिक सहयोग की सराहना की और कहा कि चाबहार बंदरगाह की संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन और इसे कनेक्टिविटी हब में बदलने से क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत परियोजना को पूरा करने से संबंधित दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है।
सऊदी अरब के अपने 2 दिवसीय दौरे से वापसी के दौरान ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि रियाज ने तेहरान के साथ दीर्घकालीन सहयोग समझौते की तैयारी के संबंध में सभी जरूरी कदम उठाए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने शुक्रवार को सऊदी अरब से वापसी के दौरान विमान में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन सहयोग समझौते की रूपरेखा तैयार करने की दिशा में प्रारंभिक कदम उठाए जाने का आदेश दिया है। अमीर अब्दुल्लायन का कहना था कि दस्तावेज तैयार हो जाने के बाद समझौते पर दोनों देशों के उच्च अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। अमीर अब्दुल्लायन की सऊदी अरब की ये यात्रा एक दमिश से भी अधिक समय में किसी ईरानी विदेश मंत्री की ये पहली यात्रा है। दोनों देशों के संबंधों में एक मील का पत्थर साबित होगी। गौरतलब है कि 2016 में सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपने राजनयिक संबंध उस समय तोड़ लिए थे जब सऊदी अरब में शिया धर्मगुरु और कई लोगों को फांसी दिए जाने से उत्तेजित तेहरान स्थित सऊदी दूतावास पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया था। हालांकि दोनों देशों ने कई महीनों की बातचीत के बाद मार्च में चीन की मेजबानी में संबंधों की बहाली के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे और अपने दूतावासों को खोलने का ऐलान किया था।
कुवैत के विदेश मंत्री शेख सालेह अब्दुल्ला अल जाबिर अल सबा ने कहा कि ईरानी विदेश मंत्री की सऊदी अरब की यात्रा से क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ सऊदी अरब पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने समकक्ष प्रिंस फैसल बिन फरहान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अलावा दूसरे उच्चाधिकारियों से मुलाकातें की। शुक्रवार को कुवैती विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक बयान में अल सबा ने कहा, तेहरान और रियाज के बीच संबंध क्षेत्रीय देशों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाएंगे। उन्होंने सऊदी अरब की ईरानी विदेश मंत्री की यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्पष्ट है कि दोनों ही देश द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को मजबूती प्रदान करने में दिलचस्पी रखते हैं। कुवैती विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस यात्रा से फारस खाड़ी के अरब देशों और ईरान के बीच ऐतिहासिक रिश्तों में नया अध्याय खुलेगा। अल सबा का कहना था कि पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध और अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना जैसे सहयोग के सिद्धांतों पर एक उज्ज्वल भविष्य बनाया जा सकता है। कुवैती विदेश मंत्री ने तेहरान रियाज संबंधों की बहाली के लिए चीन, इराक और ओमान के प्रयासों की सराहना की।
भारत में एडटेक कंपनी अनअकैडमी ने उस टीचर को बर्खास्त कर दिया है जिसने अपने स्टूडेंट को चुनाव में उन उम्मीदवारों को वोट देने कहा था जो पढ़े लिखे हों। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ मंत्रियों की शिक्षा के बारे में विरोधाभासी बातें कही जाती है और कुछ को कहा जाता है वे पढ़े लिखे नहीं हैं। करण सांगवान नाम के इस टीचर को बर्खास्त करने की सूचना देते हुए अनअकैडमी के को फाउंडर रोमन सैनी ने ट्वीट कर लिखा कि सांगवान ने कंपनी की आचार संहिता को तोड़ा है, इसलिए उन्हें हटाना पड़ा। सांगवान के इस ट्विटर के वायरल होने के बाद एक्स पर यूजर इस बात को लेकर भिड़ गए कि पढ़े लिखे नेताओं को वोट देने की अपील करना कितना सही है। इस घटना पर सोशल मीडिया में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। यूट्यूबर और पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा कि करण सांगवान को बॉयकॉट गैंग के दबाव में अनअकैडमी से निकाल दिया गया, पढ़े लिखे नेता को ही वोट देना, ये कहने की सजा मिली लॉ के टीचर करण सांगवान को। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जो लोग दबाव में झुक जाते हैं और धमकाए जाते हैं वे कभी भी वैसे नागरिक बनाने में मदद नहीं कर सकते जो दुनिया में सभी बाधाओं के सामने खड़े रहते हैं।
भारत में राजस्थान के कोटपुतली जिले के हरसौरा थाना इलाके में गुरुवार की रात 3 मुस्लिम युवकों की लिंचिंग की गई जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। 27 वर्षीय वसीम की कई लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी जबकि उनके 2 अन्य साथियों को पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है हालांकि दोनों की हालत नाजुक बताई जाती है। कोटली जिला पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा का कहना है कि इस मामले में 4 फॉरेस्ट कर्मियों समेत 10 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हमारे रडार पर कुछ और लोग भी हैं जिन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। एसपी शर्मा ने दावा किया कि हमलावर लोगों ने पीड़ितों पर लड़कियां चुराने का आरोप लगाया है। फॉरेस्ट कर्मियों ने इन्हें रोकने की कोशिश की उस दौरान हाथापाई हुई। हालांकि शर्मा ने यह नहीं बताया कि हाथापाई में क्या हमलावर पक्ष के किसी सदस्य को कोई मामूली सी भी चोट आई या नहीं। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि मुस्लिम युवकों को पीटने वाले सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही कर्मचारी नहीं थे बल्कि उनके साथ उग्र लोगों की एक भीड़ ने पीड़ितों की जमकर पिटाई की। शर्मा ने बताया कि अभी अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है, पुलिस की जांच जारी है और प्रयास है कि सभी तथ्य सामने लाए जाएं।
इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइली राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व तो इस समय बड़ी बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं और हालात पर ईरान और हिजबुल्ला का नियंत्रण है। इसराइल की चैनल 13 के सामरिक मामलों के टीकाकार एलन बेट डेविड ने मारी समाचार पत्र से कहा कि पहले इसराइली सेना इसराइल के हितों के लिए इस्तेमाल होती थी मगर अब इसराइल का राजनीतिक नेतृत्व सेना पर हमला कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के बीच पहला टकराव गत शुक्रवार को देखने में आया जब वायुसेना चीफ ने 60 रिजर्व सैनिकों के साथ ऐलान कर दिया कि वो काम जारी रखने या छोड़ देने के लिए किसी और के आदेश को नहीं मानेंगे बल्कि अपनी मर्जी के अनुसार काम करेंगे। यह बयान जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सेना पर जोर दिया कि वो इस बयान का खंडन करे। नेतन्याहू ये समझने को तैयार नहीं है कि ये लीक हुई खबर नहीं सेना का औपचारिक बयान है जो सेना के प्रवक्ता ने दिया और इसका खंडन नहीं किया जा सकता। इसराइल में पायलटों पर हमले हुए और सेना में काम छोड़ने का ऐलान करने वाले सैनिकों को निशाना बनाया गया जिन्होंने न्यायिक बदलाव पर आपत्ति जताते हुए सेना को छोड़ा था। इसका पूरा ठिकरा नेतन्याहू ने सेना प्रमुख के सर पर फोड़ दिया कि वो सेना को संभाल नहीं पाए।
रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन हाउस ने शनिवार को एक बयान में बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जारी सैन्य ऑपरेशन की कमांड का दौरा किया और बड़े सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। ये तब हुआ जब यूक्रेन ने दक्षिण पूर्वी मोर्चे पर अपनी सेनाओं के आगे बढ़ने का ऐलान किया। क्रेमलिन हाउस ने एक बयान में कहा कि ये सैन्य अधिकारियों से राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात रेस्तोव के इलाके में स्थित सैन्य कमांड में हुई। रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य ऑपरेशन शुरू किया है। क्रेमलिन के अनुसार बैठक में रूस के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वालेरी जेरासिमोव ने ब्रीफिंग दी जबकि कुछ अन्य सैन्य अफसरों ने भी ब्रीफिंग दी। इससे पहले यूक्रेन का बयान आया था कि उसने फ्रंट लाइन पर एक छोटा गांव रूसी सेना के कब्जे से आजाद करा लिया। इससे पहले यूक्रेन को अपने जवाबी ऑपरेशन में कोई कामयाबी नहीं मिली थी जिसके बाद इस कामयाबी को महत्वपूर्ण माना जाता है। क्रेमलिन हाउस ने बैठक के बारे में ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया। इस मुलाकात की एक वीडियो फुटेज जारी की गई जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राष्ट्रपति पुतिन को सैन्य कमांड की इमारत में ले जा रहे हैं। रोस्तोव शहर यूक्रेन की सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो दक्षिणी क्षेत्र की रूसी सैनिक कमान का केंद्र है। गुरुवार को यूक्रेन की सेना ने ऐलान किया कि दोनेस्क के इलाके में ओरिजिनी गांव को रूसी सेना के नियंत्रण से आजाद कराया गया है और अब आगे बढ़ते हुए रूसी सेना के क्रिमिया जाने वाले जमीनी रास्ते को काटने की कोशिश की जाएगी। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने कहा कि परमाणु हथियार मौजूद होने का मतलब रूस को सुरक्षा खतरों से बचाना है और रूस पश्चिमी देशों को बार बार याद दिलाता रहेगा कि परमाणु युद्ध बेहद खतरनाक है।
पश्चिमी अफ्रीका के देशों के आर्थिक संगठन ने ऐलान किया है कि यह संगठन नाइजेर में सैनिक ऑपरेशन करने के लिए तैयार है और इसके लिए दिन का भी निर्धारण कर लिया गया है मगर अभी ऐलान नहीं किया गया है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
دوستوں، میں ہوں رویش زیدی اور آپ کا سواگت ہے راجنیتک چرچا کے دینک کاریکرم میں۔ آج کے کاریکرم میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے دنیا میں رکشا شکتی میں ایران کے استھان کے بارے میں۔
ابھی زیادہ سمے نہیں گزرا ہے کہ جب امریکہ،
اور پھر بات کریں گے نائجر پر منڈراتے یدھ کے سائے کے بارے میں،
افریقی دیش نائجر میں راجنیتک سنکٹ کے بڑھنے کے ساتھ ہی۔
اور انت میں چلیں گے بھارت، جہاں کشمیر کی راجنیتک پارٹیوں نے ایک بار پھر دھارا 370 اور 35A کو لے کر سپریم کورٹ میں جاری سنوائی پر پرتکریا دیتے ہوئے دیش کی نیائے ویوستھا پر وشواس جتایا ہے۔
جموں کشمیر میں سب سے بڑے وپکشی دل نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ
تو دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں رکشا شکتی میں ایران کے استھان کی۔ ایران میں اسلامی کرانتی کی مہان سفلتا کے بعد سورگی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور سروچ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے نیتوت میں ایرانی راشٹر کی رکشا شکتی ابھوتپور طاقت میں بدل گئی ہے۔ اس سمبندھ میں ایک وشلیشناتمک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی سید میسم۔
ابھی زیادہ سمے نہیں گزرا ہے کہ جب امریکہ اور پشچمی دیشوں کے دباؤ میں دنیا بھر کے دوسرے دیش ایران کو ہتھیار اور ضروری سینے اپکرن دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آج استھتی بدل چکی ہے۔ دنیا بھر کی مہا شکتیوں کے دباؤ میں وشو بھر کے دیش ایران کو کسی بھی قیمت پر میزائل وایو رکشا پرالی جیسے رکشا اپکرن دینے کو تیار نہیں تھے، لیکن آج دنیا کی کئی مہا شکتیاں اسی ایران سے آدھونک ڈرون اور سینے اپکرن خریدنا چاہتی ہیں۔ انیہ دیشوں میں ایران کے سینے اپکرنوں اور ہتھیاروں کے نریات میں وردھی کا الیکھ کرتے ہوئے ایرانی اپرکشا منتری نے کہا ہے کہ ایران اتیت میں سینے ہتھیاروں کا آیاتک تھا، لیکن اب یہ رکشا ادیوگ کے کھیتر میں دنیا کے شیش 10 دیشوں میں سے ایک ہے۔ جنرل رضا تلائی نیک نے بتایا کہ 19 اگست کو 70 سال پہلے امریکہ اور انگلینڈ کے سنیکت پریاسوں سے ہوئے اپمان جنک تختہ پلٹ کی وشگانٹھ ہے۔ یہ گھٹنا 70 سال سے ایران میں پشچم کے اتیاچاروں کے اتہاس کا ایک دستاویز ہے۔ انہوں نے کہا کہ 19 اگست کا تختہ پلٹ ایک ایتیہاسک انوبھو تھا، جس کے بعد ایران کے کرانتیکاریوں نے 45 سال پہلے اتیاچاری شکتیوں کی جڑیں کھود دی اور اس دیش میں اہنکار کے ورچسو کی زمین سوکھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران ہمارے سامنے جو مہتوپورن مدے تھے ان میں سے ایک رکشا کا مدعا تھا، لیکن امام خمینی اور سروچ نیتا کے نیتتو میں ایرانی راشٹر کی رکشا شکتی ابھوتپور شکتی میں بدل گئی۔ انہوں نے کہا کہ رکشا ہر سمے اتہاس میں اور سبھی لوگوں کے لیے پراسنگک ہے۔ ناگرک سرکشا کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، مانو جیون بھی پرکرتی کا حصہ ہے، پرکرتی میں ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں جو مانو جیون اور اس کی سرکشا کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ پردوشن اور وبھن روگوں سے لے کر پراکرتک درگھٹنائیں مانو سرکشا کو خطرے میں ڈالتی ہیں، لیکن انسان نے جب سے اس دنیا میں قدم رکھا ہے وہ ان چنوتیوں کے مقابلے میں سنگھرش کرتا رہا ہے اور اپنی رکشا کرتا چلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں انسان کے سامنے اچھائی اور برائی کو پیش کیا گیا اور انسان کے اندر بھی جو بری طاقت ہے اس سے سنگھرش کا راستہ دکھایا گیا۔ امام خمینی نے آج کے باہری شیطان کا پرچہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ سب سے بڑا شیطان امریکہ ہے، اور سروچ نیتا نے بھی کہا ہے کہ امریکہ دنیا کے شیطانوں کا مکھیا ہے، اس لیے سوبھاوک روپ سے جہاں بھی اچار اور اتیکرمن کرنے والی شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں جو شیطانی ویوستھا قائم کرنا چاہتی ہیں، ان سے مقابلے اور سنگھرش کے لیے کسی کے پاس شکتی کا ہونا ضروری ہے۔ کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ ایک دن وہ تھا جب ایران کا دشمن آکرامک استھتی میں تھا، لیکن آج ایران جہاں رکشاتمک روپ سے شکتیشالی ہے وہیں وہ آکرامک روپ سے بھی دشمنوں کے لیے ایک برا سپنا بن چکا ہے۔
और अब चर्चा करते हैं नाइजर के सिर पर मंडराते युद्ध के बादल के बारे में। एक ओर नाइजर की ज्यादातर जनता इस देश में हुए सैन्य विद्रोह के समर्थन में है, तो वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह विद्रोह हजम नहीं हो रहा है। इस बीच नाइजीरिया के वरिष्ठ शिया धर्मगुरु आयतुल्ला शेख जगजकी ने कहा है कि नाइजर और नाइजीरिया में मौजूद संकट और समस्याओं के लिए पूरी तरह अमेरिका और फ्रांस जिम्मेदार हैं। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ ही कायम रिजवी।
अफ्रीकी देश नाइजर में राजनीतिक संकट के बढ़ने के साथ ही पश्चिमी अफ्रीका के आर्थिक संघ एक्वास ने नाइजर पर हमले की बात फिर से दोहराई है। इस संगठन का कहना है कि हमले का फैसला तो कर लिया गया है, किंतु इसकी तारीख निर्धारित नहीं की गई है। घाना की राजधानी में एक्वास के सदस्य देशों के प्रमुख के साथ मुलाकात में इस संगठन के प्रभारी अब्दुल फत्ताह मूसा ने यह भी बताया कि नाइजर के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की अवधि बहुत ही कम होगी। उन्होंने कहा कि यह काम नाइजर में संविधान को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से किया जाएगा। जैसे ही नाइजर के विरुद्ध एकवास संगठन की ओर से हमले की बात कही गई, उसी समय इस देश पड़ोसी माली और बुर्किना फासो के विमानों के पहुंचने की वहां पर खबरें आने लगी। माली और बुर्किना फासो वे देश हैं जो पिछले 6 महीनों के दौरान सैन्य विद्रोह के साक्षी रहे हैं। इन दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करके बताया है कि नाइजर में किसी भी प्रकार का सैन्य हस्तक्षेप हमारे साथ युद्ध करने के अर्थ में होगा और ये दोनों देश नाइजर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नाइजर में 26 जुलाई सन 2023 को इस देश के राष्ट्रपति के सुरक्षा बलों ने विद्रोह कर दिया था। इस कार्रवाई के बाद नाइजर के तत्कालीन राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया गया। नाइजर के सैन्य विद्रोह पर विभिन्न देशों विशेषकर अमेरिका और फ्रांस की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। फ्रांस ने आरंभ में ही ये ऐलान कर दिया था कि नाइजर पर एकवास संगठन के हमले का वो समर्थन करता है। हालांकि नाइजर के बहुत से लोग इस देश में होने वाले सैन्य विद्रोह को सही बता रहे हैं। वे ये मानते हैं कि देश में राजनीति के पटल पर परिवर्तन होने चाहिए। नाइजर के लोग अपने देश में फ्रांस की उपस्थिति को गलत मानते हैं। इसको वे एक प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि देश के अपदस्थ राष्ट्रपति फ्रांस की कठपुतली के रूप में काम कर रहे थे। यही कारण है कि वे उनके अपदस्थ होने के पक्ष में हैं। नाइजर के लोगों का ये भी मानना है कि उनके देश में विदेशी हस्तक्षेप को रोका जाए। नाइजर अफ्रीका का वो देश है जो फ्रांस के लिए विशेष महत्व का स्वामी है। इस देश में यूरेनियम के बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। फ्रांस के परमाणु बिजली घरों की 30% से अधिक की आपूर्ति नाइजर के यूरेनियम से होती है। यही वजह है कि नाइजर फ्रांस के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसे में नाइजर जैसे देश का हाथ से निकल जाना फ्रांस की इमेज को भी नुकसान पहुंचाएगा। यही वजह है कि फ्रांस सैन्य विद्रोह के आरंभ से ही वहां के अपदस्थ राष्ट्रपति को उनकी सत्ता तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा है, क्योंकि इसी में उसका भला है। इसी बीच नाइजीरिया के मुसलमानों के नेता शेख इब्राहिम जगजकी ने कहा है कि नाइजर तथा नाइजीरिया में संकट और समस्याओं का मुख्य कारण अमेरिका और फ्रांस हैं।
और अब रुक करते हैं भारत का। भारत प्रशासित कश्मीर से मोदी सरकार द्वारा धारा 370 और आर्टिकल 35 ए समाप्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई को लेकर इस राज्य के ज्यादातर विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण कश्मीर में कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 और 35 के हवाले से अपना पक्ष भरपूर तरीके से रखा और उन्हें अब ये आशा है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। श्रीनगर में पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि हमारा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा मुख्यालय है जहां से हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वर्ष 2019 के 5 अगस्त को घटना घटी जिसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमारे विशेष अख्तियार समाप्त कर दिए गए, हमने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी जिस पर सुनवाई جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس حوالے سے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ اس بیچ نئی دہلی میں لوک سبھا سانسد اور نیشنل کانفرنس کے ایک نیتا جسٹس حسنین مسعودی نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ رجیم صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی وکتوی جاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف ان کا ماننا ہے کہ جموں کشمیر میں شانتی استھاپت ہوئی ہے تو دوسری طرف ہائیبریڈ ملیٹنٹس کا اپیوگ عمل میں لا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ استھتی کتنی تناؤ پورن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں ہنسک گھٹناؤں کا کرم ختم ہونے والا ہی نہیں ہے اور آئے دیوس ملیٹنٹ ایکٹیویٹی بڑھتی جا رہی ہے، پرنتو نئی دہلی کی موجودہ رجیم صرف اور صرف جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جموں کشمیر کے ہت میں یہی ہے کہ جموں کشمیر میں ودھان سبھا کے چناؤ کرائے جائے اور جو ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہمارے وشیش اختیارات سماپت کر دیے گئے ہیں انہیں ترنت واپس کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ہم نے اپنا پکش بھرپور طریقے سے رکھا اور ہم یہ آشا پرکٹ کرتے ہیں کہ بہت جلد اس میں ہمیں نیائے ملے گا۔
دیکھیے اس کا جواب تو آپ ان سے مانگیے نا جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سب نارمل ہے، جموں کشمیر میں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی معاملہ ہے ہی نہیں اور بالکل پورا امن سکون کا ماحول ہے۔ تو جو بیانیہ بنا رہے ہیں، جو ایک نریٹو بلڈ اپ کر رہے ہیں اور جس کو ہم بار بار جس کی ہم نفی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب تک جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں، تو جو ان کی سیاسی امنگیں ہیں، جو ان کے سیاسی حقوق ہیں، جب تک ان کا احترام نہیں کیا جائے گا دیکھیے تب تک امن ناممکن ہے۔ تو لیکن کوئی مانتا نہیں، تو اب اس کی وضاحت وہی کریں۔
یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ جموں کشمیر کے تمام مین اسٹریم دلوں نے اپنے طریقے سے کاؤنسلرز کو ہائر کر کے سپریم کورٹ میں اپنا دفاع کرنے کا بھرپور اوسر پراپت ہوا انہیں، اور انہوں نے تمام تر جو بھی ان کے پاس وسائل موجود تھے وہ بروئے کار لائے۔ پی ڈی پی کے ادھیکشا محبوبہ مفتی، سی پی آئی ایم، کانگریس اور انیہ دلوں نے بھی آشا پرکٹ کی ہے کہ سپریم کورٹ سے انہیں نیائے ملے گا۔ سپت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
دوستوں، راجنیتک چرچا کا یہ دینک کارکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، آپ نے سنا کارکرم راجنیتک چرچا، اور اب پرستت ہے ہمارا ساپتاہک کارکرم اچھی عادتیں۔
دوستو، کارکرم اچھی عادتیں کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور سید مسم کا سلام سویکار کیجیے۔
کارکرم کی پچھلی کڑی میں ہم نے آتم نینترن کی بات کی تھی، آج ہم ایک انیہ کوشل ذمہ داری سویکار کرنے کی بات کریں گے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، کوئی بھی گناہ گار کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں ڈھوئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پرلے کے دن جب لوگوں کے دنیا میں کیے گئے کاریوں کا حساب کتاب ہوگا تو ہر کوئی اپنے کاریوں کے لیے ذمہ دار ہوگا۔ ایک دوسرے استھان پر قرآن کہتا ہے، جس چیز کے بارے میں تمہیں گیان نہیں ہو اس کا انوسرن مت کرو، کیونکہ تمہارے کان، آنکھیں اور دل سبھی ذمہ دار اور جواب دہ ہیں۔
ذمہ داری کو سویکار کرنا یا اپنی ذمہ داری کے پرتی جواب دہ ہونا ایک ایسی وشیشتا ہے جسے انسان اس دنیا میں سیکھتا ہے۔ دراصل کہا جا سکتا ہے کہ یہ وشیشتا ایک پرکار کا کوشل ہے، اور کوئی بھی شخص ذمہ دار یا غیر ذمہ دار بن کر اس دنیا میں جن نہیں لیتا ہے، بلکہ وہ پریوار، سکول، دوستوں اور ساتھیوں سے جو کچھ سیکھتا ہے اور انوبھو پراپت کرتا ہے ویسا ویوہار کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس میں یہ کوشل مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ سمجھدار ہونے پر اس میں نکھار کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص میں یہ کوشل نہیں ہے تو اسے اپنے جیون میں طرح طرح کی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
غیر ذمہ دار انسان کو اپنے جیون میں جن سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے سمبندھ کسی کے ساتھ پرگاڑھ نہیں ہوتے ہیں اور لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اس کے پرینام سوروپ وہ ایک اچھا دوست اور جیون ساتھی نہیں بن سکتا۔ کسی بھی سماج میں اگر طلاق کے کارنوں پر نظر ڈالیں گے تو پرمکھ کارنوں میں سے ایک جیون ساتھی کا غیر ذمہ دار ہونا ہے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ذمہ داری سویکار کرنا سکھانا چاہیے۔ اس کے لیے انہیں ان کا آتم وشواس مضبوط کرنا چاہیے اور ان کا اتساہ بڑھانا چاہیے۔
लोग समाज में जो भूमिकाएं स्वीकार करते हैं उन भूमिकाओं के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है। जितना लोग अपनी भूमिकाओं के प्रति सजग होंगे उतनी ही अच्छी तरह से वे अपनी जिम्मेदारियों को अदा करेंगे। लेकिन अगर कोई अपनी भूमिका से अवगत नहीं है या उसे लेकर जागरूक नहीं है तो वो उस भूमिका को पूरी तरह से अदा नहीं कर सकेगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है और वो इसी मकसद से मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे समाज में अपनी इस भूमिका के महत्व को समझना चाहिए। मेडिकल की पढ़ाई और ट्रेनिंग के वक्त छात्रों को उनकी इस भूमिका के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है उसके बारे में बताया जाता है। इसलिए अगर कोई डॉक्टर बनने के बाद भी मरीजों के उपचार से बचेगा तो दरअसल वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है जो उसने स्वीकार की थी।
सामाजिक उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी एक महत्वपूर्ण कौशल है। हम सभी किसी न किसी समाज के सदस्य हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उस समाज के नियमों का सम्मान करें और उनका पालन करें। समाज में आपको जो भी भूमिका दी जाती है आपका दायित्व है कि आप उसे अच्छी तरह से अदा करें। उदाहरण के रूप में अगर आप एक ड्राइवर हैं तो आपका दायित्व है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इसके अलावा एक नागरिक होने के तौर पर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें।
इसमें कोई शक नहीं है कि हमें सभी को जीवन यापन और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजगार की जरूरत होती है। हर काम या व्यवसाय के कुछ नियम होते हैं। अगर हम उन नियमों से अवगत होते हैं तो हम उनका पालन अच्छी तरह से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई किसी कार्यालय या किसी साइट पर काम करता है तो उसे कार्यस्थल पर पहुंचने और वहां से निकलने का निर्धारित समय मालूम होना चाहिए। नियमों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का उस कंपनी या संस्था के प्रदर्शन पर अपरोक्ष या परोक्ष रूप से असर पड़ता है। एक कर्मचारी के रूप में हम कंपनी के प्रति जितने अधिक प्रतिबद्ध होंगे कंपनी की प्रगति उतनी अधिक सकारात्मक होगी जिसका लाभ हमें भी पहुंचेगा।
अधिकांश लोग व्यक्तिगत भूमिकाओं के अलावा एक छोटे समूह या टीम के सदस्य होते हैं। एक परिवार की तरह टीम के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। टीम वर्क और उसे करने की एक क्षमता को आज की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है। आप किसी एक समूह में अलग अलग लोगों के साथ कि जिनमें प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व और बौद्धिक दायरा अलग होता है काम करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे समूह में काम करने और साहसपूर्वक और प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभाने में सक्षम होना चाहिए। इस तरह के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिम्मेदार होना जरूरी है। एक विस्तृत योजना आपकी इसमें मदद कर सकती है।
इस कौशल में माहिर लोग कुछ विशेष विशेषताएं रखते हैं। जिम्मेदारी का एहसास लोगों के लिए काफी लाभदायक होता है। कुल मिलाकर जिम्मेदार शख्स आमतौर पर जीवन में दूसरे लोगों की तुलना में अधिक अच्छा प्रदर्शन करता है। वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी दूसरों की गर्दन में नहीं डालता है। वह अपने फैसलों के परिणामों से अनुभव हासिल करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उससे लाभ उठाता है। कोई भी जिम्मेदार शख्स दूसरों के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और दूसरों से उलझता नहीं है। इसी तरह से इस विशेषता का दाम्पत्य जीवन पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। अध्ययनों के मुताबिक जिम्मेदार लोग अपने संयुक्त जीवन में ज्यादा सफल रहते हैं। इसी तरह से ये लोग अवसाद और तनाव से कम ही पीड़ित होते हैं।
जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा करता है तो उसे समाज में लोग स्वीकार करने लगते हैं और यहाँ तक कि उसे सम्मान देने लगते हैं। ऐसा शख्स लोगों से संबंध स्थापित करने में अधिक सफल रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपना काम सही समय पर अंजाम देता है और इस विशेषता के कारण उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। अच्छे प्रदर्शन से प्राप्त अच्छा परिणाम बेहतर जीवन और अंततः एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए अधिक प्रेरणा देने वाला और ऊर्जावान होता है। जिम्मेदारी को पूरा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है जिससे आत्मसम्मान पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति आंतरिक संतुष्टि का अनुभव करता है तो उसमें आंतरिक अनुशासन पैदा होता है और अंत में वो संतुष्टि का एहसास करता है।
अगर आपको लगता है कि आप एक जिम्मेदार शख्स नहीं हैं तो चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिम्मेदार बनने के लिए कुछ रास्ते हैं जिन पर चलकर इंसान इस कौशल को प्राप्त कर सकता है। इस कौशल को हासिल करने के लिए सबसे पहले बहाना बनाने की आदत को त्याग दीजिए, क्योंकि अक्सर लोग जब अपने कामों में शिथिलता दिखाते हैं तो वो उसे सही ठहराने के लिए विभिन्न प्रकार के बहाने बनाते हैं। आप जब तक अपनी जिम्मेदारियों का गड़ा दूसरों पर फोड़ते रहेंगे या विभिन्न बहानों से उसे सही ठहराते रहेंगे तो आपकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। इसीलिए कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले उस काम को अंजाम देने की अपनी क्षमता को ध्यान में रखें। अगर किसी काम को अंजाम देने की क्षमता या योग्यता नहीं है तो बहाना बनाने या उसमें ढिलाई बरतने से अच्छा उसे अस्वीकार करना है। अगर आप अपने कार्यों के लिए योजना और समय सारणी बनाकर रखेंगे तो आपको एहसास होगा कि उससे पहले तक आप कितना अपना समय बर्बाद करते थे।
इसके बाद के चरण में आपको अपने टाइम टेबल का अच्छी तरह से पालन करना होगा। अगर आपके पास टाइम टेबल है तो आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ज्यादा सजग रहेंगे। जो भी आपके लक्ष्य हैं उन्हें हासिल करने के लिए समय निर्धारित करें ताकि आप ढिलाई से काम न करें। इससे कहीं अधिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपसे कोई अनुचित मांग की होगी लेकिन आपने ना नहीं कहने के साहस के अलावा भी उसे स्वीकार कर लिया होगा। अंततः आप ऐसे किसी काम को अंजाम नहीं देने की असमर्थता के कारण खुद को दोष देते हैं और संभव है कि दूसरे भी आपको अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करने के कारण बुरा भला कहें।
इसके अलावा खुद अपने अंदर या अपने बच्चों में इस कौशल को मजबूत करने के लिए आपको सहानुभूति की भी जरूरत होती है। सहानुभूति का अर्थ है कि आप आसपास की घटनाओं को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देख सकते हैं और उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। सहानुभूति आपको ये देखने में मदद करती है कि आप जो करते हैं वो दूसरों को कैसे प्रभावित करता है। यदि आप इन भावनाओं को समझ सकते हैं तो अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करना आसान हो जाता है। इस हुनर को बचपन से ही विकसित करना जरूरी है। जब आपका बच्चा किसी के बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे दोष दे या उसके साथ दुर्व्यवहार किए बिना उसे दूसरे बच्चे की भावनाओं से परिचित कराएं। फिर भी अगर आप कोई समस्या के समाधान में कोई समस्या है तो किसी सलाहकार की मदद लें। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोता, आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम अच्छी आदतें, और अब प्रस्तुत है आपकी सेवा में हमारी समय की सभा का अंतिम कार्यक्रम ईरानी व्यंजन। ईरानी व्यंजन।
दोस्तों, कार्यक्रम ईरानी व्यंजन की एक अन्य कड़ी में आपका स्वागत है। मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, कुर्दिस्तान प्रांत के सकिज शहर में हम आपको लेकर आए हैं। ये पर्वतीय शहर है और बहुत पुराना इतिहास रखता है। ساقیز 2600 سال پہلے یعنی ماد جاتی کے زمانے میں ایزرتا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ماد جاتی کے لوگوں نے کچھ سمے کے لیے اس شہر کو اپنی راجدھانی بنا لیا تھا اور یہاں عمارتیں اور قلعے بنائے گئے تھے۔ ان میں زیویا قلعہ اور قبلانتو قلعہ پرمخ ہیں، مگر آشور بادشاہ سارگون دتیہ نے ماد جاتی کے علاقوں پر حملہ کر دیا اور انہیں شکست دے دی اور پورے شہر اور وہاں بنی عمارتوں اور درگوں کو دھوست کر دیا۔ اس کے کئی سال بعد سکا جاتی کے زمانے میں اس اجڑے ہوئے شہر کو پھر سے آباد کیا گیا اور اس کا نام اسکیت رکھ دیا گیا۔ سقز کا موجودہ نام سکا جاتی سے لیا گیا ہے۔ سکا جاتی اس علاقے میں رہا کرتی تھی۔ سقز کے رہنے والے کردی بھاشا میں بات کرتے ہیں اور کردی بھاشا کی سورانی بولی یہاں پرچلت ہے۔ یہاں کی آبادی پراچین آریائی جاتی سے سمبندھ رکھتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کی بڑی پراچین سنسکرتی ہے جو اپنی اصلی شکل میں آج تک سرکشت ہے۔ آج بھی ایران کے اس بھاگ میں بہت سارے اسکالروں اور بدھ جیویوں نے خوب نام کمایا ہے، ساتھ ہی اس علاقے کا نام روشن کیا ہے۔
سقیز شہر میں بڑے سندر پراکرتک ستھل اور گھومنے پھرنے کی جگہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ جگہیں وہ ہیں جو شہر کے باہر ہیں۔ یہاں کی تفری گاؤں میں جنہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اسکی پٹ ہے جو سقیز سے بانی کی اور جانے والے مارک پر استھت ہے۔ یہ وزن پہاڑ کے اتری بھاگ میں ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ سال کے 6 مہینے سے ادھک سمے میں یہ پسٹ برف سے بھری رہتی ہے۔ جاڑوں میں اسکی کے شوقین اور پیشہ ورانہ طور پر اسکینگ کرنے والے یہاں جم گھٹ لگائے رہتے ہیں۔
पौष्टिक और स्वादिष्ट ईरानी खानों का परिचय। घर बैठे सीखिए लज्जतदार ईरानी खाने पकाने की विधि। कार्यक्रम श्रृंखला ईरानी व्यंजन में हर शनिवार को कार्यक्रम ईरानी व्यंजन।
سقیز کے انیہ درشنیہ استھلوں میں کرفتو غفا ہے۔ یہ غفا سقیز ہی نہیں بلکہ پورے ایران کے بڑے سندر اور درشنیہ استھلوں میں گنی جاتی ہے۔ یہ پراکرتک سندرتا کا ادبھت نمونہ ہے۔ بے حد پراچین کال میں یعنی 4000 اور 5000 سال عیسیٰ پورو کے سمے میں یہ غفا انسانوں کے شرن لینے کی بڑی اونچی جگہ تھی۔ اسی طرح سلوکیان کے سمے سے لے کر اسلامی دور تک بھی اس غفا کو انسانوں دوارا استعمال کیا جاتا رہا۔ پراتن ودوں نے جو اتکھنن کیے ہیں اس سے پتا چلا ہے کہ اس غفا کے ایک بھاگ میں ایرانی کلاکاروں نے بنا اوزار کے ہی بڑی سندر کلاکرتیاں بنائی ہیں۔ یہ غفا چونے کی ہے۔
سقیز شہر کے درشنیہ استھلوں میں پاپیوس گارڈن، شیخ متحر مسجد، بابا شیخ کا مزار، حاج حکیم نیلوفری نام کے بزرگ ہستی کا مزار، شیخ حسن مولانا کا ایتیحاسک قرآن اور شیخ حسن مولانا مسجد کا نام لیا جا سکتا ہے۔
دوستو، کاریکرم کے پہلے بھاگ میں ہم نے سقیز شہر کے اتہاس کے بارے میں بتایا اور یہاں کے درشنیہ استھلوں کا ویورن دیا۔ اب ہم آپ کو سقیز کے سوادشت کھانوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ان میں ایک تو سینگ حسیر آش اور دوسرے یکاوے ہے۔ آئیے پہلے سینگ حسیر آش کے بارے میں بات کرتے ہیں۔
ایران کے فوڈ کلچر میں آش کا بڑا مہتوپورن استھان ہے۔ آش کے بارے میں بڑی تاکید ہوتی ہے کہ پتلی نہ ہو۔ آش میں جو چیزیں پڑتی ہیں وہ شریر کی ضرورت کے وٹامنوں اور انیہ تتووں سے سمردھ ہوتی ہے۔ ایرانی آش کی 400 سے ادھک قسمیں ہیں، جن میں سے ایک سینگ حسیر آش ہے۔ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں سیر یعنی لہسن کا استعمال ہوتا ہے۔ اس سوادشت آش کو بنانے کا طریقہ آپ کو بتانے سے پہلے آپ کو لہسن کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔
لہسن سبھی کے لیے بہت جانا پہچانا نام ہے، اسے خوب استعمال کیا جاتا ہے۔ لہسن کے بہت سارے اوشدیہ گڑ ہیں۔ ایک جوا لہسن میں 2% میگنیزینیم، 2.6% विटामिन बी, 1% विटामिन सी, 1% सिलेनियम, 0.06 ग्राम फाइबर जैसे तत्व शरीर को मिल जाते हैं। इसके अलावा लहसुन में उचित मात्रा में कैल्शियम, तांबा, पोटेशियम, फास्फोरस और आयरन पाया जाता है। लहसुन के अंदर ये तमाम खासियतें पाई जाती हैं और साथ ही ये बीमारियों की दवा भी है। सदियों से लहसुन की मदद से अस्थमा और जुकाम का इलाज किया जाता रहा है। अगर लहसुन का तेल नाक के इर्द गिर्द गले और पसलियों पर मला जाए तो सीने की जकड़न दूर हो जाती है। शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अस्थमा की वजह से पैदा होने वाली एलर्जी को भी लहसुन कंट्रोल कर सकता है और जुकाम का इलाज कर सकता है।
दोस्तों आइए आपको सिनेगह सीर बनाने का तरीका बताते हैं। अगर आप ये आश 4 से 5 लोगों के लिए बनाना चाहें तो 300 से 400 ग्राम चिकन ले लीजिए, 1 कप मसूर, 5 चम्मच कश्क नामक खासी रानी चटनी, हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च इच्छानुसार, 100 ग्राम चिकन का कीमा जिससे छोटे छोटे कोफ्ते बनाए जाएं, आधा गिलास लहसुन और प्याज तेल में लाल की हुई, थोड़ा सा पुदीना का पाउडर और तेल सजाने के लिए।
पहले मुर्ग के गोश्त के टुकड़ों को मसूर के साथ, जिसे आप पहले ही पानी में भिगोकर कुछ देर तक रख चुके हैं, एक पतीली में डालिए। पतीली में थोड़ा पानी डाल दीजिए, इतना कि मसूर और मुर्ग की बोटियां उसमें डूब जाएं। अब उसे चूल्हे पर चढ़ा दीजिए, इसे खोलने दीजिए। इसके बाद इसमें मिर्च डाल दीजिए और उसे थोड़ी देर पकाइए। इसके बाद इसमें चावल डालिए और थोड़ी लाल की हुई प्याज डाल दीजिए और कुछ देर पकने दीजिए। जब चावल का झाग ऊपर तैरने लगे तो उसे निकालकर उसमें कश्क डाल दीजिए, जो सफ़ेद रंग की खास ईरानी चटनी है। 10 मिनट पकने के बाद उसमें हल्दी डाल दीजिए। अब मुर्ग के गोश्त से बने कीमे में नमक और मसाला डालकर छोटे छोटे कोफ्ते बना लीजिए और कढ़ाई में तेल डालकर तल लीजिए। जब आश में लुआब पैदा हो जाए तो उसे चूल्हे से उतार लीजिए और उस पर कोफ्ते, लहसुन, तली हुई प्याज और पुदीना सजाकर परोसिए। ये सिनेगह सीर आश है जो बहुत चाव से खाई जाती है।
कुर्दिस्तान के लोगों का एक और स्वादिष्ट स्थानीय पकवान ये कावा है। इसे कुर्द जाति के लोग बहुत चाव से खाते हैं और मेहमानों को भी खिलाते हैं। ये कावा दरअसल यल्दा की रात का खास पकवान है। हमने अपने कार्यक्रमों में यल्दा की रात के बारे में जरूर आपको बताया होगा कि साल की सबसे लंबी रात को लोग खास रीति रिवाज के साथ मनाते और गुजारते हैं। ये पकवान भेड़ के गोश्त से तैयार होता है। पुराने जमाने में जब फ्रिज वगैरह नहीं होता था, पतझड़ के शुरू में ज़िबह की जाने वाली भेड़ों का गोश्त अच्छी तरह से पकाने के बाद तेल में तल लिया जाता था और उसके बाद उसे मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था ताकि जाड़ों में उस गोश्त को खाया जाए। इस गोश्त को कारुमे कहते थे। ईरानी चिकित्सा विज्ञान में भेड़ के गोश्त को गर्म माना जाता है। जब इस गोश्त को यकावा में पड़ने वाली दूसरी चीज़ों जैसे खजूर और किशमिश के साथ पकाया जाता है तो ये गर्म आहार तैयार हो जाता था और सर्दियों के मौसम के लिए बहुत अनुकूल होता था।
ये डिश तैयार करने के लिए 3 कप कुटा हुआ गेहूं या टूटे हुए चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, 300 ग्राम भेड़ का गोश्त, 3 प्याज, हल्दी, नमक, काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीन की लकड़ी, 100 ग्राम किशमिश, 10 खजूरें और 100 ग्राम देसी घी ले लीजिए।
पहले कुटे हुए गेहूं की थोड़े नमक के साथ 5 कप पानी में 1-2 घंटे तक भिगोकर रख दीजिए। इसके बाद गोश्त को 1 प्याज और दालचीनी की लकड़ी के साथ अलग से पका लीजिए। जब پک جائے تو اس میں کشمش ڈال دیجیے اور تھوڑی دیر چلائیے. اس کے بعد بچی ہوئی دو پیاز چھوٹی چھوٹی کاٹ کر تل لیجیے اور اس میں نمک ہلدی اور کالی مرچ ملا لیجیے.
اب کٹے ہوئے اور دو گھنٹے سے بھگوئے ہوئے گیہوں میں دیسی گھی ڈال دیجیے اور چولہے پر پکنے کے لیے چڑھا دیجیے. جب اس کا پانی سوکھ جائے تو پکا ہوا گوشت اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پرتوں کی شکل میں بچھاتے جائیے اور اس پر لال کی ہوئی پیاز بھی بچھاتے رہیے. اس کے بعد اسے آدھے گھنٹے سے 45 منٹ تک دم لگنے دیجیے. آخر میں کھجور کو تیل میں تل لیجیے اور اسے سجانے کے لیے استعمال کیجیے. اس طرح یہ کاوہ تیار ہو گیا, خود بھی کھائیے اور دوسروں کو بھی کھلائیے.
تو دوستو کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے, انومتی دیجیے.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. شروتاؤ آپ نے ہمارا ساپتاہک کاریکرم ایرانی وینجن سنا. ہمیں آشا ہے کہ ہمارا آج کا پرسارن آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کی پرتیکریاؤں کی ہمیں پرتیکشا رہے گی. اس کے ساتھ انومت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.